अल्लाह अकबर, इज कॉल अल्लाह, जब अल्लाह ताला फरमाएगा। अच्छा आप देखिए, आप कॉला जो है ना वो माजी का सिवा है, पास्ट टेंस। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन ये फरमाएगा, लेकिन पास्ट टेंस में बात हो रही है, जब अल्लाह ने फरमाया था। असल में इसका माना अगर हमने करना है तो जब अल्लाह ने फरमाया था माना होगा, लेकिन वो हम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए क्योंकि बात ये मुस्तकबिल की हो रही है, कयामत की हो रही। तो फिर कयामत के बारे में जब बात की जा रही तो माजी का सीवा क्यों आ रहा है? तो मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि जब कयामत के हवाले आते हैं तो बहुत दफा देखेंगे पास्ट टेंस यूज होता है। और वजह इसकी क्या है? वजह ये है कि जो पास्ट में बात हो चुकी होती है वो कंफर्म्ड होती है। जैसे जो कल खाया या पिया हमने, या जहां गए या जो हमने किया, वो कंफर्म्ड है। अब मैं कहती हूँ कि आज मैं ये करूंगी, वो कंफर्म नहीं है। क्या पता हो, क्या पता ना हो सके। चाहे मेरी कितनी ही विल क्यों ना, मेरा कितना ही इरादा क्यों ना, लेकिन देर इज अ चांस, क्या पता जिंदगी ही ना रहे, क्या पता पता नहीं क्या हो जाए। तो एक चांस तो रहता है ना, चाहे 1% ही क्यों ना, लेकिन एक फ्यूचर का एक चांस रहता है कि हो सकता है वो चीज ना। लेकिन पास्ट की चीज जो हो चुकी, अब वो बदल नहीं सकती, वो वैसे हो चुकी, इट्स डन, इट्स अ डन डील। ठीक है, इस तरह ही कयामत के अहवाल को बयान किया जाता है कि लोगों समझ लो हो चुका, क्योंकि इसमें जरा भी शक नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे जो कोई बात कल हो चुकी तो मैं कहूं मैंने कल ये पहना था, और फिर मैं उसको बदल दूं कि नहीं कल ये नहीं पहना था, कुछ और पहना था। नहीं, वो नहीं हो सकता, इसलिए कि वो कंफर्म है, वो डन है। ठीक है, अब इसी तरह जो कयामत की जितनी भी सारी ये बातें बता दी गई वो ऐसे ही है, इतनी ऑथेंटिक और इतनी कंफर्म है कि समझ ले हो चुकी, इसलिए ये पास्ट टेंस लाया जाता है। अच्छा अब पैगंबरों की तो बात हो गई, अब स्पेसिफिकली ईसा अलैहि सलाम की बात की जा रही है यहाँ पे। और उनकी स्पेसिफिक यहाँ पे क्यों बात की जा रही है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम उस वक्त से देख रहे हैं कि किस तरह से ईसाइयों के अकीदे का रद्द किया गया, कि तुम क्या ईसा अलैहि सलाम को समझते हो, और वो क्या है, और वो क्या कहते हुए गए दुनिया से, उन्होंने क्या प्रीच किया। तो कयामत के दिन क्या होगा? अब ये वाली आयात हैं जो कि आप किसी भी क्रिश्चियन को सुना कर और बता कर ये बता सकते हैं कि हमारे कुरान में ये है कि ईसा अलैहि सलाम का ये मामला होगा कयामत के दिन। अल्लाह अकबर, इस कॉल अल्लाह, जब अल्लाह ताला फरमाएगा या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, उज़कुर निअमती अलैक व अला वालिदतिक, याद कर मेरी नेमत को जो मैंने तुझ पे की और तेरी वालदा पे की। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम के ऊपर क्या नेमतें अता फरमाई? अल्लाह ताला ने उनको बिन बाप के पैदा फरमाया, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की का एक मोजा जो ईसा अलैहि सलाम की सूरत में सामने आया। अल्लाह ताला ने फिर उनको बहुत सारी नियमतें यहाँ अता फरमाई, नबुवत की नियमत अता फरमाई, आगे जिसका जिक्र आ रहा है। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किताब उतारी है, हिकमत उनको अता फरमाई है, उनको अल्लाह ताला ने बचपने के अंदर बोलना का मोजा अता फरमाया, और भी मोजे जिनका आगे जिक्र आ रहा है वो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने उनको जो नियमतें दी हैं उनको याद करने का अल्लाह ताला फरमाएगा कि याद करो मैंने जो तुम पे नेमतें की और तुम्हारी वालदा पे नेमतें की। अब उनकी वालदा पे क्या नेमतें हुई देखिए ये, और इसका ईसा अलैहि सलाम में क्या ताल्लुक कि उनकी वालदा के ऊपर भी नेमतें की जा रही है। जो भी नेमत वालदेन पे की जाए वो औलाद पे भी नेमतें की। जैसे मसलन आपके वालदेन अगर खाते पीते हैं तो आपने भी एक ऐसे खाते पीते घराने में यानी आंख खोली कि जहां पे फकरो बाका नहीं था, आपने भी एक ऐसी जगह पे आंख खोली जहां पे नेक नामी थी, जहां पे लोग अच्छी शोहरत रखते थे, तो आपको भी उनकी वजह से एक अच्छी शोहरत मिली। ठीक है, तो उनकी वालदा भी एक नेक औरत थी, उनके ऊपर जो अल्लाह ताला ने नवाजिशें की उनमें, जैसे अल्लाह ताला ने उनको सूरह में हम पहले पढ़ चुके हैं ना, सूरह आले इमरान में, कि अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहान की औरतों पर फजीलत दी। اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاكي وطهرك واصطفاكي على نساء العالمين, اللہ نے آپ کو چن لیا تمام جہان کی عورتوں پہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کر لیا, منتخب کر لیا, پھر ان کو اللہ نے چنا ایک معجزہ دکھانے کے لیے کہ بن باپ کا بچہ ان سے پیدا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات عطا فرمائی, جو ایک بہت بڑی ایک بات تھی, کیونکہ کسی عورت کے اوپر تہمت لگ جانا یہ ایک اس کے لیے موت سے بھی بدتر چیز ہے, اور ایسی پاک دامن عورت کے لیے جس کو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہ ہو, ان کے اوپر حرام کاری کی تہمت لگا دی انہوں نے, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی نصیب فرمائی کہ وہ بولے اور انہوں نے اپنی ماں کی برات کا اعلان کیا. یعنی ایک دودھ پیتا بچہ, ایک نیو بورن بچہ بول رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا حضرت مریم پہ, پھر ان کو بھی بے موسم پھل دیے, پھر ان کی کفالت کا کتنا اچھا انتظام کیا, سب ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے. پھر ان کو نالج اللہ تعالیٰ نے دیا کتاب کا, پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیقہ فرمایا, تصدیق کرنے والی تھی اللہ کے کلمات کی, تو ان کے اوپر بھی اللہ کے بڑے انعامات تھے. سوچے نا اللہ تعالیٰ کسی کو فرما دے کہ اس کو اللہ نے چن لیا ہے ساری جہان کی عورتوں پہ, بیسٹ تانی آدمیوں میں تو بہت سارے بیسٹ آئے, کامل آئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں گنی چنی عورتوں کا نام لیا ہے, اور ان میں ایک حضرت مریم بھی ہیں. تو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے قیامت کے دن. کیا صرف عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرائی جائیں گی یا دوسرے لوگوں کو بھی کرائی جائیں گی؟ جی دوسرے لوگوں کو بھی کرائی جائیں گی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے کان دیے نہیں, آنکھیں نہیں دی, مال نہیں دیا, اولاد نہیں دی, ہم سب کو دیا ہوا نا, ہم الحمدللہ ہم سب کے پاس کان ہیں, آنکھیں ہیں, الحمدللہ مال ہے, اب چاہے آپ اسے سرٹیفائی ہو نہ ہو, فلانا ہم سے زیادہ امیر ہے, ہم تو اتنے امیر نہیں, ہم تو غریب غریب سے لوگ ہیں, کھاتے پیتے ہیں نا آپ, چھت ہے آپ کے سر پہ نا, تو بس آپ مالدار. اولاد کی نعمت, یہ کہا جائے گا یہ نعمتیں تمہیں دی, تمہارے لیے مویشی کھیت مسخر نہیں کیے, تمہیں سرداری کا موقع نہیں عطا فرمایا, ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو نعمتیں یاد کرائی اپنی قوم کو, ان میں ایک بادشاہت بھی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ سرداریاں ہم نے سب کو آج ملی نہیں, جو آسائشیں جن میں ہم آج رہ رہے ہیں, بادشاہ بھی نہیں پہلے زمانوں میں ایسی آسائشوں میں رہتے ہوں گے کہ ایک بٹن دبایا تو پنکھے چل پڑے, اے سی چل پڑے, ٹی وی چل پڑے, گاڑیاں آن ہو گئی, کیا کیا ہمارے پاس سہولیات نہیں آج. تو اللہ تعالی یاد کرائے گا کہ میں نے تجھے یہ نہیں دیا تھا, اور پھر تم اب کیا کر کے لائے میرے لیے. پھر یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت نہیں دی تھی, عزت بھی ایک نعمت ہے, سرداری نہیں دی تھی, آدمی کو کہا جائے گا تجھے بیوی نہیں دی تھی, عورت کو کہا جائے گا تجھے شوہر نہیں دیا تھا, یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ اکبر, انسان کیا کہہ سکتا ہے پھر آگے سے, ہاں اللہ دیا, ہاں اللہ دیا, پھر تمہیں کیا کیا. یعنی جتنی زیادہ آپ کے پاس نعمتیں اتنا ہی سوال زیادہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کے اتنے احسانات, آپ کو تو زیادہ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مان کے شکرانہ کرنا چاہیے تھا, اللہ کی فرما برداری میں اور تیز بھاگنا چاہیے تھا, نیکیوں میں اور تیز لپکنا چاہیے تھا, آپ نے کیا کیا, اتنی زیادہ لیزی ہو کے بیٹھ گئے, اتنے ہی آپ ان نعمتوں کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہا اللہ کے لیے. جس کے پاس کم نعمتیں ہیں وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو میرے پاس ٹائم ہے, جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں وہ تو نعمتوں میں اتنا انڈلج ہے, اتنا ان نعمتوں نے اس کو غفلت میں ڈال دیا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ٹائم, کیونکہ نعمت ہے بچے, نعمت ہے آسائشیں, نعمت ہے کام کاروبار, ان نعمتوں نے اس کو مشغول کیا. تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ کو وہ نعمتیں دے تو آپ کی فرما برداری بڑھے اور ہماری کم ہو جاتی. ہم تو اچھا کھانا بھی کھا لینا تو اس دن نیند اتنی آنے شروع ہو جاتی ہے, دعوت کھا کے یا ریسٹورینٹ میں کھانا کھا کے, پھر اس کے بعد آ کے ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ اب ہم نماز بھی پڑھیں, تو وہ نماز کیسی ہوتی ہے, حالانکہ آج تو کھانا سب سے اچھا کھایا آپ نے, باقی دنوں سے زیادہ بہتر تھا. नमाज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। तो अक्सर देखा गया कि जितनी नियमतें ज्यादा होती हैं उतनी मशगूलियत ज्यादा उनमें हो जाती है इंसान की, और उतना ही वो अल्लाह को भूल जाता है। अब बाज लोगों का पूछो, वो कहते टाइम नहीं मिलता, बच्चे बच्चों का काम है। तो बच्चे तो नेमत है, बच्चों की नेमत, इस नेमत के मिलने के बाद तो आपको ज्यादा अल्लाह ताला के सामने झुकना था, वो पहला भी छोड़ दिया। घर तो नेमत है, छत होना नेमत है, आप कहते घर के काम ही नहीं खत्म होते, घर के कामों में इतनी बिजी रहती हूँ कि अल्लाह के लिए वक्त निकालना ही मुश्किल। तो घर तो नेमत था, आपको नेमत मिली, आप अल्लाह को भूल गए। फिर इसी तरह जॉब्स हैं या बिजनेसेस हैं, जितने बड़े जॉब और बिजनेस है उतना ही ज्यादा वक्त ही नहीं मेरे पास। अल्लाह अकबर। तो ये ना सोचे कि ईसा बिन मरियम को याद कराया जाएगा, मुझे और आपको भी याद कराया जाना, फिर क्या जवाब देंगे? क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा आपको इज्जत दी, आपको छत दी, आपको गाड़ियां दी, आपको सेहत दी, आपको औलाद दी, आपको शोहर दिया, आपको और कितनी बेशुमार नेमतें, गिने भी तो गिन नहीं सकते। और बहुत सारे लोग उस वक्त रेफ्यूजी कैंप्स में थे, होमलेस थे, हैंडीकैप थे, जहन काम नहीं करते थे, बीमार थे, अस्पतालों में पड़े हुए थे, छत के बगैर थे, दो वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल था। उस वक्त के अंदर, उस जमाने में आप ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे, क्या लेकर आए हो अब? उसके बाद क्या होगा फिर बताए? आज ही सोच लेना, अल्लाह ताला ने वहां पे खड़ा करके ये हमें समझा दिया कि आज सोच लो इन बातों को। आज सोचें आप क्या जवाब देंगी? ये जो मैंने आपको तिर्मिजी की भी हदीस बताई है और मुस्लिम की भी हदीस का एक हिस्सा बताया है, तो ये याद कराएगा अल्लाह ताला नहीं थे उनको? माल मवेशी याद कराए? आप हमारे पास मवेशी नहीं तो गाड़ियां, जमीनें, घर हैं बड़े बड़े, क्या कहेंगे? आजाद की सलामती आपको दी, क्या कहेंगे? डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, अस्पताल के बिस्तरों में एड़ियां नहीं रगड़ रहे थे, क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम को याद दिलाएगा कि ईसा बिन मरियम, मैंने तेरे पर बड़ी नेमतें थी। और फिर नेमतों में और क्या नेमत थी, अब उनकी कुछ डिटेल है नेमतों की। इज अय्यद तू कबीर वो हल कुदुस, मैंने तेरी ताईद की रूहुल कुदुस से। रूहुल कुदुस किनको कहते हैं? जिब्राइल अलैहि सलाम को। ये भी उनका एक लकब है। कुदुस अल्लाह की जात है, अल्लाह की रूह, कुदुस की रूह। यानी ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह की रूह थे, मगर इसको कहते हैं निस्बत तशरीफी, यानी शर्फ के लिए कहा जाता है। जैसे नाखतुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी, जो समूद की ऊंटनी थी, तुम कोई अल्लाह की ऊंटनी थोड़ी है। खाना काबा को बैतुल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह का घर थोड़ा ही है। तो बिल्कुल लिटरल सेंस में नहीं है, बल्कि उसकी एक ऑनर देने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए। तो उनको रूहुल अमीन भी कहा जाता है, अमानतदार रूह। उनको रूहुल कुदुस भी कहा जाता है, रूह में रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये फरिश्तों के सरदार फरिश्ते हैं। अल्लाह के यहाँ इनका बहुत बड़ा मकाम है, सब फरिश्तों में सबसे बुलंद मकाम पे फरिश्ते जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला चाहते तो अल्लाह के बहुत सारे और भी फरिश्ते थे, किसी और फरिश्ते के जरिए आपकी मदद फरमा देते, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने सबसे ऑनरेबल फरिश्ते के जरिए आपकी ताईद फरमाई। कैसे ताईद फरमाई? के वही आए थे हजरत मरियम के बतन में फूंक मारी थी तो उनको हमल ठहरा था। और भी कई सख्त सख्त मकाम पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मदद फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम की। और फिर आपने तुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और आप कलाम करते थे लोगों से फिल महद। महद में मैंने आपको कहा ना पंगूड़े में, यानी जब आप न्यू बॉर्न बेबी थे तो तब आप लोगों से कलाम किया करते थे। यानी उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको एक मौजज़ा अता फरमाया कि उन्होंने कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, और अपनी माँ की बरात भी उन्होंने बयान फरमाई। वह कहला और उधेड़ उम्र में, मैंने आपको बताया कि कहल कौन सी उम्र होती है, जैसे आप 50-60 की उम्र को कबूलत कहते थे, जिसको हम आम जुबान में अपनी उर्दू में कहते हैं पक्की उम्र। एक पक्की उम्र के अंदर भी आप कलाम करेंगे तो उसमें तो सभी कलाम करते। कलाम से मतलब है यहाँ पे अल्लाह की तरफ दावत देना। तो असल में ईसा अलैहिस्सलाम की जब एज थी ना 30, तो तब उनको नबुवत मिली थी, और 33 पे उनको उठा लिया गया था। ये कहा जाता है। तो उनकी तो अभी वो पक्की उम्र आई ही नहीं, और ये इस बात की एक साइन है कि ईसा अलैहि सलाम आएंगे और एक उधेड़ उम्र उनको मिलेगी जिस तक भी वो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो बुढ़ापे में नहीं दुनिया से गए थे, या एक बहुत बड़ी उम्र के होके नहीं दुनिया से उठाए गए थे। वَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, और जब याद कर, इज का मतलब क्या होता है, याद करो, याद करो जब अल्लम तुकल किताब, अब ये वहां पे हशर के मैदान में बात हो रही है सारी, जब मैंने सिखाई थी तुझको किताब, किताब से मतलब क्या है, लिखना पढ़ना। और बाद तफसीरों में ये भी लिखा है कि अल किताब से मुराद कुरान है, इसलिए कि जब ईसा अलैहि सलाम दोबारा आएंगे तो वो कुरान का भी इल्म लेंगे, कुरान भी अल्लाह ताला उनको सिखा दे, क्योंकि ये तो कयामत के दिन की बात हो रही है ना। तो किताब का इल्म दिया, लिखना पढ़ना अगर इसका माना ले तो वो भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत होती है कि अल्लाह किसी को लिखना पढ़ना सिखा दे। आप देख रहे हैं इसकी भी हम बहुत दफा कदर नहीं करते कि हमें पढ़ना आता है, हमारे सामने कोई चीज आ जाए तो हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से पहली वही जो उतरी, तो उसी से पता चल गया कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। तो रब इसमी रब्बी कल लजी खलक में आपको पता चला ना कि कलम से लिखना ये भी अल्लाह की नियमतों में से नियमत है। वो लोग जो बेचारे पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए कितना मुश्किल होता है, कोई भी इबारत उनके सामने लिखी उनको पता ही नहीं क्या लिखा। तो मैंने सिखाया तुझको लिखना पढ़ना, और हिकमत दी तुझे, यानी विजडम दी, समझ बूझ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं, तो ये तो अल्लाह के पैगंबर थे, इनके अंदर जितनी फहम और फरासत, जितनी समझदारी होगी उसको आप सोच सकते हैं, इसके लिए अल्लाह ताला खुद फरमा दे कि हमने आपको हिकमत अता फरमा। तौरात और इंजील, और तौरात का इल्म भी आपको, इल्म भी आपको दिया, और इंजील का इल्म भी आपको दिया। तो सबसे पहले देखिए, एक पहले बोलने की बात आई और उसके बाद इल्म की बात आई है, यानी ये नहीं कहा गया कि हमने आपको खूबसूरत बनाया, आपको रंग गोरा दिया, आपके जो है ना वो इतनी जबरदस्त जवानी आपको दी, आपको ये नहीं। इल्म हम नियमतों में सबसे पहले देखते हैं शक्लो सूरत कैसी है, रंग रूप कैसा है, कद काठ कितना है, सेहत कैसी है, जवानी कैसी है। अल्लाह ताला ने इल्म की बात फरमाई तो इल्म की अहमियत यहां से पता चलती है, इसको नेमत करार दिया कि अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया, और वो भी कौन सा इल्म, दीन का इल्म, किताबों का इल्म, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसी तरह पढ़ना लिखना जानना ये भी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ताला की अता फरमा दे कि कोई पढ़ना लिखना जानता हो, और हिकमत, हिकमत में सब में नहीं आती, ये भी अल्लाह ताला की देन होती है। युतिल हिकमत मैयशा, वो देता है हिकमत जिसको वो चाहता है। तो अल्लाह से हिकमत भी मांगनी चाहिए, मसनून दुआओं में से एक दुआ है जिसमें अल्लाह ताला से हिकमत मांगी गई है। वा इत तखलुकु मिन अत्तीनी का हई अत्तीरी बिइज़्नी, और याद करें जब आप परिंदा बनाया करते थे और मट्टी से बनाते थे, एक परिंदे की शक्ल की एक चीज बनाते थे, यानी एक मट्टी से एक स्कल्पचर बनाते थे, मेरे हुक्म से, मेरे इज्न से, फतनफुकु फीहा फतकूनु तैरन बिइज़्नी, फिर आप उसमें फूंक मारते थे तो वो परिंदा जिंदा हो जाता था साथ मेरे इज़्न के। यानी इसमें ईसा अलैहि सलाम का कोई कमाल नहीं था कि वो कोई अपनी मर्जी से ये मौजज़े दिखाते जा रहे थे, अल्लाह ताला फरमा रहे बिइज़्नी, यहाँ पे आप देखेंगे 4 दफा बिइज़्नी आया, जो कि वर्थ है कि आप इसको याद रखें, इसको हाईलाइट करें कि जो भी कोई भी मौजजा किसी भी पैगंबर के हाथों से अगर होता है तो वो अल्लाह ताला के इज़्ज़त से ही होता है, वो पैगंबरों का खुद का कमाल नहीं होता। तो खुद बताएं फिर, और जो कोई जिससे हम इतने मुतासिर हो जाते हैं, हो जो फलां के पास ये फलां के ने ऐसा कर दिखाया, अगर कोई करामत, अब जो अंबिया के अलावा किसी औलिया अल्लाह के हाथ पे होती है वो करामत होती है, उसको करामत कहते हैं, तो वो क्या अल्लाह की तरफ से नहीं होगा। इस पे ईसा अलैहि सलाम तो नहीं फूले समाए के, आ देखो मैं क्या करता हूँ, और देखो इसके ऊपर अपनी बड़ाइयां बयान कर रहा हूँ। हमने सूरह आले इमरान में पढ़ा कि کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ میں یہ کرتا ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں پرندے میں پھونک مارتا ہوں, بِإذن اللہ, وہاں پہ کیا آتا ہے, بِإذن اللہ, میں کوڑی کو, مادر زاد اندھے کو اچھا کرتا ہوں, بِإذن اللہ. وہ بار بار بِإذن اللہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنی شیخیاں نہیں ماری. یہاں پہ اگر دو چار چیزیں کسی کو آ جائیں, ذرا سا کسی کے پاس علم آ جائے, ذرا سا کسی کے پاس کوئی ہنر آ جائے, کوئی سکل اس کے پاس ہو جائے, تو وہ بس ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے, میں ایسے میں ویسے, اپنی اس قدر بڑھائیاں. کوئی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرے بِإذن اللہ, اللہ کے اذن سے ہے یہ سب. اگر میں نے اچھا کھانا بنا لیا اللہ کے اذن سے, اگر میرے پاس یہ ہنر ہے, یہ میرے پاس قابلیت ہے کوئی, یہ دوسروں سے بہتر میں کوئی چیز کام کر سکتی ہوں, اللہ کے اذن سے ہی ہے, میرے اپنی تو کوئی طاقت نہیں. دیکھیں سو ہمبل جو پیغمبر ہوتے تھے, کتنے ہمبل ہوتے تھے. اور یہ صرف ہمبلنس کی بات نہیں ہے, یہ کوئی وہ صرف یہ نہیں کر رہا کہ جیسے کوئی لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر عاجزی بہت ہے, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں بھائی اللہ کی طرف سے, یہ نہیں, ریئلی مین اٹ, وہ واقعی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے, یہ ہمارا نہیں کوئی کمال, وہ جسٹ ایک اپنی عاجزی میں نہیں بول رہے ہوتے, سمجھ آئی بات. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی باتیں کہہ رہے تھے تو وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کو بتاؤں دیکھو میں کتنا نیک ہوں, میں تو سب چیزیں اللہ کی طرف کو کرتا ہوں کہ اللہ کے سے ہی ہے. آج اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ اصل میں اپنے اندر دل میں بڑھائی ہیں اور اوپر اوپر سے نہیں, بس اللہ کی ہے, بس ہمارا بس اللہ کا کرم ہے جی, لیکن اپنے اندر اتنا بڑا بت ہے تکبر کا کہ میں تو واقعی بڑی قابل چیز ہوں. دیکھو ایسا ویسے کوئی کر نہیں سکتا جس طرح میں کام کرتی ہوں, میرے پاس جو ہے نا قابلیت اور ہمت اور جس طرح سے میں چیزیں کرتی ہوں, کوئی اور کے بس کی بات نہیں, یہ اندر ہوتا ہے, یہ پھوک بھری ہوتی ہے اندر, لیکن پیغمبروں میں ایسا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس دن یاد کرائیں گے تم یہ کرتے تھے نا میرے دل سے, ہاں تمہارے پاس بھی جو سکلز ہیں, جو ہمارے پاس قابلیتیں ہیں, جو ہمارے پاس علم ہے, اللہ نے ہمیں یاد کرایا اگر قیامت کے دن کہ میں نے تمہیں یہ یہ علم نہیں دیا تھا, میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا, میں نے تمہیں یہاں دنیا کے فلاں فلاں علوم دیے تھے, پھر یاد ہے تمہیں یہ یہ کام تم دنیا سے زیادہ اچھا کر سکتی تھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہوتی ہے نا, اس میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے, ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. پھر اس کے بعد اگر آپ بہت ماہر ہیں کسی بھی فیلڈ میں, وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, چاہے وہ کوئی جاب میں ہے, کسی بزنس میں آپ انویسٹ کرتی ہیں, آپ کو انویسٹمنٹ کا بڑا پتا ہے, آپ کو گھر داریوں کا بہت علم ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ نے آپ قیامت کے دن یہ آپ کو گنوا دیا, تو پھر آپ کیا کہیں, میں نے تمہیں یہ ہنر یہ علم دیا تھا کس لیے, تمہیں بس یہی کام کرتی رہو, اور بس میں اللہ یہی کر کے آئی. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کے موجے نہ سہی, مگر ہم سب کو قابلیتیں ملی ہیں الحمدللہ. فَتَنْفُوفُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ, تو وہ پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے, پھونک آپ مارتے تھے لیکن زندہ اس کو اللہ کرتا تھا. اب اس کا مطلب یہاں پہ نہیں ہے کہ لوگ بھی اب سکلپچر بنانا شروع ہو جائیں, دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مٹی سے بناتے تھے تو ہم بھی نہیں, یہ حرام ہے سکلپچر بنانا, کسی قسم کے بھی جانداروں کے بت بنانا, ان کے وہ کیا سکلپچر ہی کہتے ہیں اس کو, بت کہہ لیں یا جو بھی, تو وہ بنانا یہ حرام ہے ہمارے دین میں, اس کی اجازت نہیں. وہ تو ایک موجزہ دکھاتے تھے نا, اور وہ ویسے ہی مٹی کا تو نہیں بن کے پڑا رہتا تھا کہ اس کو ڈیکوریشن کے طور پہ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ایک موجزہ دکھانا تھا تاکہ لوگ ان کی حقانیت کو مانیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ تو بری الاسماء والابرص باذن, اور تو اچھا کرتا تھا, مادر زاد اندھے کو جو ابتدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو بھی صحیح کر لیتے تھے, اور اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا, اور برس والے کو بھی جو اس وقت بیماری ہوتی تھی جس کی کوئی علاج نہیں تھا, وہ اس تو خرج الموت بھی اس میں, اور جب تو نکالتا تھا مردے کو ساتھ میری زن کے مردے کو زندہ کر دیتے تھے, چاہے کتنا پرانا مرا ہوا ہے یا نیا نیا مرا ہے, لیکن اس کو بھی اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے. آج لوگ شوب دے دکھاتے پھرتے ہیں اس طرح کے, پتہ نہیں کیا کرتب دکھاتے ہیں, مار دیا ہم نے دیکھو پھر زندہ کر دیا, ایسے کر دیا وہ کر دیا, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ये अल्लाह की तरफ से मुआवजा होता है, ये ऐसे नहीं होता। हाँ वो भी करेगा, दज्जाल भी करेगा ऐसा, लेकिन वो अल्लाह ताला उसको ये पावर देगा ताकि वो एक फितना बने लोगों के लिए, ताकि उसके जरिए आजमाइश करे अल्लाह ताला लोगों की। वह इस कफफ तो बनी इसराइल का, और जब रोका मैंने बनी इसराइल को तुझसे, किस चीज में रोका? बनी इसराइल तो पीछे पड़े हुए थे उनके, कि हमने इनको जान से ही मार देना, और वो तो ऐसे उनके दर पे थे कि आप देख ले कि फिर आखिर में जाके क्या हुआ, उन्होंने सूली चढ़ाने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने बचाया ना, ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी ताकत तो नहीं थी, अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया। उस वक्त जो माहौल बन चुका था कि उनका बचने के कोई चांसेस नहीं थे, अल्लाह ताला ने बचा लिया। इस जीता हम बिल बयीनात, जब तू लाया उनके पास रोशन निशानियां, यानी ये मुजजात भी तूने उनको दिखा दिए थे, फिर भी वो उनकी जान के दर पे हो गए। फकाल अल्लज़ीना कफरू मिनहुम, तो कहा काफरों ने, जो जो इन पे ईमान नहीं लेकर आए थे उनको काफिर कहा गया, चाहे वो अपने आप को यहूदी कहते थे लेकिन उनको भी काफिर कहा गया, क्योंकि जो पैगंबर आए ने उनके ऊपर ईमान नहीं लाए। वो क्या कहने लगे, इन हाजा इल्ला सिहरु मुबीन, ये तो खुला जादू है, यानी इन मौजों क्या कहते हैं, ये जादू है। इससे पता चलता है जिन्होंने नहीं मानना होता, वो आप उनको कुछ भी दिखा दें वो नहीं मान के देंगे, और उन्होंने इसको जादू करार दे दिया। हालांकि इतनी खुली खुली बातें थी, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, कूड़ी अंधे को अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके बाद परिंदे को जिंदा कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी निशानियां थी, लेकिन उन्होंने जादू कह के उसको रिजेक्ट करा, क्योंकि ये सबसे आसान चीज होती है ना, जब कह देंगे जादू है, और इसी वजह से तो वो पीछे पड़ गए थे, उन्होंने कहा था ये जादू करती और जादू तो हराम है, तो लिहाजा ये इन्होंने हराम काम किया, इन्होंने कुफर कर दिया, ये तो मुर्तद हो गए हैं, मुर्तद की सजा कत्ल है, लिहाजा इनको तो सूली चढ़ाया जाए, और उन्होंने काम ही खत्म कर दिया। وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, और देखो फिर अल्लाह ताला ने एक अपनी और नेमत याद करा रहे हैं अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम को। ए ईसा, जब मैंने वही की थी हवारियों की तरफ, हवारी कौन थे? आप सबको पता है हवारी, भी पहले भी हम जिक्र आले इमरान में पढ़ चुके हैं कि हवारी वो लोग थे जो ईसा अलैहि सलाम के साथी बने, जिसको साथी इसका मतलब है हवारी का, असल में हाउर हाउर से कहते हैं, सफेदी का भी माना लेते हैं, कि यानी ये लोग धोबी थे, लोगों के कपड़े धोया करते थे, मैल को जहर निकालते थे, बस्ती में रहते थे, ये ईसा अलैहि सलाम के ऊपर ईमान ले आए थे, इनको हवारी कहा गया, जब दूसरे लोगों ने नहीं माना था तो सिर्फ ये मानने वाले थे। तो बहुत ज्यादा इसके पीछे हवारी लफ्ज के पीछे बहुत सारी बातें कही गई है, इस वजह से इनको हवारी कहा गया। बाहर क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहा जाता है और ईसा अलैहि सलाम के साथियों को हवारी कहा जाता है, ठीक है। तो जब वही की हमने हवारियों की तरफ, क्या मतलब वही की? क्या हवारियों के ऊपर भी वही आई थी, फरिश्ता उनके पास आता था वो तो फिर पैगंबर हो गए, अगर वही हो गई तो उनके पास नहीं। असल में वही का जो लफ्ज है ना, इसका माना होता है खुफिया इशारा, और इस तरह अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने पुराने पाक में शहद की मक्खी के बारे में भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसको वही की, यानी वो वही कौन सी वही है, यानी शहद की मक्खी की फितरत में डाल दिया अल्लाह ताला ने, तो वो शहद बनाती फिरती है, फूल फूल पे जाती है और वहां से रस चूसती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने उम्मे मूसा पे वही की, यानी क्या मतलब, उनके दिल में बात डाल दी, और उन्होंने कि क्या दिल में बात डाली, कि वो बच्चे को उसमें डाल के एक बास्केट के अंदर और दरिया में डाल दो, इस तरह शहद की मक्खी को के फितरत में डाल दी बात। तो यानी वही का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फरिश्ता ला रहा है वही और वो पैगंबर बन गए, वही का एक ये भी माना है, लेकिन एक उसका लोगो भी माना है, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो डिफरेंट है, कि इशारा कर देना, दिल में बात डाल देना, इल्हाम जिसको हम कहते हैं वो कर देना, जैसे अल्लाह ने उम्मे मूसा पे किया था। तो क्या उनके दिल में इल्हाम अल्लाह ताला ने किया, अन आमिनू बी व बि रसूली, के ईमान लाया लिया मुझ पे और मेरे रसूल पे भी। इससे हमें पता चलता है कि ये जो नेकी के ख्यालात होते हैं ना, ये भी अल्लाह की तरफ से इल्हाम होते हैं। ये जो आज तक आपने कभी कोई नेकियां की हैं ना, वो इस वजह से है कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। वो तो आप कहते हैं ना, हाँ मुझे बैठे बिठाए पता नहीं मेरे दिल में ये बात आई, और फिर मैंने ये किया और वो, सारा नेकी का काम हो गया। हाँ पता नहीं मुझे अचानक मुझे सोच आ गई, वो कहां से अचानक सोच आ जाती है, वो कहां से दिल में ख्याल आ जाता है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ख्याल होता है। अब ये अल्लाह ताला ही डालता है नेकी के ख्याल, अब किसके दिल में डालता है वो अल्लाह को बेहतर पता है, किसका दिल को वो चुनता है किसी ख्याल को डालने के लिए, वो अल्लाह का काम। इसीलिए दिलों के को पता नहीं होता दिलों का, कि दिल का वो उठ जाए फिर जाए, क्योंकि दिल में कभी बुराई का भी ख्याल आ जाता है, दिल फिसल भी जाता है, वो शैतान की तरफ से वो चीजें होती हैं। जैसे सूरह आले इमरान में हमें दुआ सिखाई गई ना, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिलों को ना टेढ़ा कर देना इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुआ मांगा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों के फेरने वाले उलट पुलट फेरने वाले मेरे दिल को साबित रखना अपने दीन पे। तो दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान, इधर चाहे इनको मोड़ दे। तो इसलिए दिल का पता नहीं होता, दिल में अल्लाह चाहे तो हिदायत का पैगाम डाल दे, नेकी का ख्याल डाल दे। तो ये नेकी करना भी हमारे बस में नहीं है, ये भी हमारी कोई कमाल नहीं है। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अल्लाह ही है वो ख्याल डालने वाला। देख लें आप, अब हमारी ये शो मारे हैं कि भाई हम तो देखो हम ईमान लेकर आए, बाकी तो किसी ने माना नहीं, हम ही थे वो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी निस्बत अपनी तरफ की है कि मैंने वही की उनके दिलों में, मैंने उनके दिलों में ये बात डाली कि ईमान ले आओ मुझ पे और मेरे रसूलों पे, मेरे रसूल पे। तो आप कहेंगे फिर दूसरों के दिल में क्यों नहीं डाले, मैं वही कह रही ना, यहाँ पे हम नहीं जानते अल्लाह की हिकमतों को, तो उनके दिलों को अल्लाह ने कैसा देखा कैसा पाया। लेकिन हदीस में आता है कि हर इंसान के साथ दो करीन है, करीन मतलब साथी, करीन है हर एक इंसान के साथ, एक फरिश्ता होता है एक शैतान होता है। तो फरिश्ते जो है वो नेकी का ख्याल दिल में डालते, तो इंसान को चाहिए कि फिर जब ख्याल दिल में आए ना उसी वक्त उस नेकी को काट डाले, बस उसको ज्यादा ना उसके ऊपर सोचे। और शैतान का काम होता है, वो भी उसका करीन है, उसका काम होता है दिल के अंदर बुराई के ख्याल डालना, वो बुराइयां डालता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ईमान लाने की बात जो है वो इल्का कर दी, इनके अंदर इल्हाम कर दी, तो वो मान गए। कालू आमन्ना, वो भी उन्होंने फौरन ने इतराब कर लिया, हम ईमान ले आए। वशहद, और हम गवाह रही है कि अन्ना मुस्लिमून, कि हम मुस्लिम हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हम ईसाई हैं, हम नसारा हैं। ईसा अलैहि सलाम के नाम के साथ जोड़ना होता तो वो ईसाई कहते हैं अपने आप को, क्रिश्चियन क्राइस्ट से उन्होंने अपना नाम रख लिया, तो वो भी अपना नाम ईसाई रख लेते, मसीही रख लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम मुस्लिम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को मुस्लिम कहा, तो ये तो इतना प्यारा नाम है जो अल्लाह के प्यारे बंदों ने हमेशा कहा है कि हम मुस्लिम हैं, फरमा बरदार मुती सबमिट कर देने वाले हैं। इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हमारा नाम मुस्लिम है, ठीक है। ये नाम किसी शख्सियत के साथ का नहीं है, बाकियों ने तो शख्सियत के साथ रखा हुआ, यहूदियों ने भी शख्सियत के साथ, ईसाइयों ने भी शख्सियत के साथ रखा, लेकिन हमारा नाम किसी शख्सियत के, हमारा नाम सबमिशन है, सबमिट कर देने वाले। इस नाम के अंदर ही सबमिशन का मान है। मुसलमान सबमिट कितना करता है ये देखें। तो वो कहते हैं आप गवाह रहे हैं ईसा, या फिर अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह तू गवाह रहना कि हम मुसलमान हो गए। तो इसे पता चला कि वो शिर्क नहीं करते थे, उन्होंने भी ईसा अलैहि सलाम को कुछ ऐसा नहीं कहा था कि आप कोई, उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का रसूल ही माना। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
यौमा यजमाउ अल्लाहु अर-रुसुल फयकूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्मा लना इन्नका علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا